الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. سبحان ربك رب العزة عما يصفون. السلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. جو بندے کامیاب ہونا چاہتے ہیں، جو مقصد حیات ہے اس دنیا میں آنے کا کہ ہم اللہ تعالیٰ کو راضی کر کے واپس چلے جائیں، تو اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے ایک نظام بنایا ہے. نظام کیا ہے؟ کہ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ پر ایمان لے آؤ، اللہ کی کتابوں پر ایمان لے آؤ، رسولوں پر ایمان لے آؤ، ملائکہ پر ایمان لے آؤ، ایمانیات سے متعلق جو بھی چیزیں ہیں ان کے اوپر صحیح طریقے سے ایمان لے آؤ. آج کے دور میں بہت ساری کنفیوژن ہے، بات سمجھ نہیں آتی. لوگوں نے اپنے ایمان کو خلط ملط کیا ہوا ہے. تو کہتا ہے قبر کا عذاب نہیں ہوتا، کوئی کچھ کہہ دیتا ہے، کوئی کچھ کہہ دیتا ہے. تو یہ سوچتے ہیں کہ پتہ نہیں جنت جہنم کی باتیں مولویوں کی بنائی ہوئی ہیں. اگر سچ مچ کسی کو پتا ہو کہ جہنم ہوگی اور اس کا یقین دل میں اتر جائے تو انسان کی نیند ختم ہو جائے. آج کسی کو پتہ چل جائے کہ مجھے کینسر ڈائگنوز ہو گیا ہے، اس بندے کو نیند آنی ختم ہو جاتی ہے. نہ اس کو نیند آتی ہے، نہ اس کے گھر والوں کو آتی ہے، نہ اس بندے کو ہنسی آتی ہے، نہ اس کو کھانا پینا اچھا لگتا ہے، نہ سونا اچھا لگتا ہے. ہر چیز دنیا کی ہوتے ہوئے اس کا دل بجھ جاتا ہے. وجہ کیا ہے کہ ڈائگنوسس ہو جاتی ہے کہ بھائی اس کو کینسر ہو گیا ہے، یا ایسا کوئی مرض لگ گیا ہے جس کا انجام موت ہے. بندہ مر جائے گا. جس دن یہ بات پتہ چلی، ڈاکٹر بھی کہیں گے کہ کوئی ایسی بڑی بات نہیں ہے، ہم سرجری کر دیں گے، اس کو نکال دیں گے، 50% چانس ہے اس کے نکل جانے کے بعد آپ نارمل لائف گزاریں گے، لیکن یہ کہے گا کہ بس زندگی ختم ہو گئی ہے. کیوں؟ کہ بالآخر موت آ جائے گی. اور اگر یہ کہہ دیا جائے کہ بھائی ٹھیک ہے ہم سرجری کر دیں گے اور پھر ہمیں پتہ نہیں ہے 5 سال زندہ رہے گا، 10 سال زندہ رہے گا، 20 سال زندہ رہے گا، اس کا اندازہ نہیں ہے، اللہ کو پتا. لیکن ابھی کیونکہ بینائن ہے، لوکلائز ہے، تو اب سرجری کریں گے تو ہو سکتا ہے ٹھیک ہو جائے گا اور ایک عرصہ زندگی گزار لے گا. حالانکہ ہم سب جانتے ہیں کل نفس ذائقۃ الموت، کہ سب کو موت آنی ہے، موت حقیقت ہے. لیکن اس کو کیونکہ بتا دیا گیا کہ بھائی تمہارا وقت باقی 10 سال 15 سال باقی رہ گیا ہے، تو بس اسی بات کو سن کر اس کی خوشی ختم ہو جاتی ہے. اس سے کوئی بھی بات کرے یہ پھیکا پھیکا جواب دیتا ہے، اس کو محفلیں اچھی نہیں لگتی اور اس کو زندہ رہنے کا مزہ ختم ہو جاتا ہے. حالانکہ ہم اپنے آپ کو دیکھ لیں، ایک پل کی خبر نہیں ہے، لیکن ہماری وہ کیفیت حاصل نہیں ہے. اچھا چلو موت تو آ گئی، تو مرنے کے بعد قبر کا عذاب، موت کی تکلیف سختی، حشر کا دن، جہنم کا عذاب، اس کا یقین نہیں ہے، کیفیت ہی نہیں پیدا ہوتی کہ یہ سب چیز بھی ہوگی. اس کو بتاتی بھی ہیں، جمعہ میں گئے، امام صاحب نے خطبہ دیا، आखिरत की बातें बताई, किसी अल्लाह वाले की सोबत में गए, उसने मौत को याद कराया, आखिरत की बातें बताई, सुन लेंगे और महसूस ही नहीं करेंगे। जैसे किसी और के बारे में बात हो रही है, इंसानों के बारे में बात नहीं हो रही। हालांकि इंसानों ने ही इसमें से गुजरना है, मां बाद मौत एक हकीकत है। तो बहरहाल बताने का मकसद यह है कि अगर ये ईमान वाकई हमारे दिल में आ जाए, अब यहां से पता चलता है कि ईमान पूरी तरह राख नहीं हुआ, पूरी तरह ये यकीन दिल में नहीं आया कि वाकई जहन्नम है। एक मरतबा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक साहबी से पूछा, तुम्हारे यहां ईमान का क्या हाल है? तो वो कहने लगे कि मेरा ईमान हक पर कायम है। आपने फरमाया कि इसकी दलील क्या है, सच्चे ईमान की दलील बताओ। उन्होंने बताया, मैं जो है जन्नत और जहन्नम को ऐसा महसूस करता हूं जैसे मैं उसको देख रहा हूं, अर्श मेरे सामने है, जहन्नमियों का चिल्लाना मैं सुन रहा हूं, ऐसी मेरी कैफियत है कि वाकई मौत हकीकत है और मरने के बाद के वाकयात जो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बता दिए कि हक और सच है। आपने फरमाया तू जान गया है, तू पहचान गया, बस इस पर कायम रहना है जी। आप बताओ, हमें इसका यकीन हुआ? हमें नहीं हुआ, हमें इस बात का यकीन नहीं हुआ कि वाकई एक बार कब्र में सुलाए जाएंगे, मनोमन मिट्टी हमारे ऊपर डाल दी जाएगी, अजीज रिश्तेदार थोड़ी देर खड़े होंगे, फिर वो अपने घर वापस लौट जाएंगे और मुझे कब्रिस्तान में उस मिट्टी के नीचे छोड़ जाएंगे, और फिर उसके बाद कभी कभी अगर टाइम मिला तो कोई आएगा, और एक जमाने के बाद फिर कोई नहीं आएगा। इतनी तन्हाई होगी, वहां पर क्या होगा सिवाय अमाल के? कुछ भी नहीं होगा। अमाल होंगे जो इंसान के साथी होंगे, ना वहां प्यारा बेटा ना प्यारी बेटी, ना हावन मोहब्बत करने वाला, न शक्कत करने वाला बाप होगा, सब छोड़ देंगे। ये एक हकीकत है। तो बात है कि भाई सच्चे ईमान को ले आना, ये हमारा इस दुनिया में आने का मकसद है कि अल्लाह पर ईमान ले आए। जब ये बात दिल में उतर गई, ये बात समझ में आ गई कि वाकई ये होने वाला एक चीज है, आखिरत है, अल्लाह के यहाँ पेशी है, तो फिर इसकी तैयारी की जाती है। और वो तैयारी क्या है कि बस हर हाल में अल्लाह को याद करना है। अल्लाह को याद करने का क्या तरीका है? अल्लाह का नाम है जो अल्लाह ने बड़ा बरकत वाला बनाया है, और वो नाम अल्लाह ने हमें दिया, वलिल्लाहिल अस्माउल हुस्ना फदउहु बिहा, के फरमाया इससे अल्लाह को याद करो, ये अल्लाह के प्यारे प्यारे नाम है, इनसे अल्लाह को पुकार करो। अल्लाह का जाती नाम सुभान अल्लाह, अल्लाह अल्लाह वाहिद है, ला शरीक है, कोई उसका साथी नहीं है। ये नाम सिर्फ अल्लाह का है, इस नाम को रखने की इजाजत किसी को नहीं है, लिहाजा इस नाम से अल्लाह को पुकारा जाता है, अल्लाह को याद किया जाता है। यही जिक्र कसीर है जो हमें करना है। इसी की तरफ निशानदही कुरान में नबी के फरमान में बार बार की गई। इसी तरह अल्लाह के और सिफाती नाम हैं, और उन सिफाती नामों का अल्लाह को ही पता है। हमें कुरान और हदीस से 99 नेम बता दिए गए, इससे ज्यादा नामों का हमें पता नहीं है, लेकिन अल्लाह की सिफात बेशुमार हैं, कोई गिनती नहीं कर सकता। जब शुमार में नहीं आती सिफात, तो नाम भी शुमार में नहीं आ सकते। अल्लाह का एक प्यारा नाम सिफाती है, मन्नान। मन्नान कहते हैं जिसके जिसका मतलब है एहसान करने वाला, अल्लाह एहसान करने वाले हैं। कुछ भी नहीं था, अल्लाह ने मखलूक को पैदा किया और मखलूक में समंदर के अंदर रहने वाली मछलियां, जमीन पर चलने वाले कीड़े मकोड़ों से लेकर जानवर हैवानात और इसी तरह हवा में उड़ने वाले परिंदे और फिर इसी तरह जो बाकी मखलूकात हैं, इन सारी मखलूकात में सबसे जो बड़ी मखलूक है, जो सबसे इज्जत वाली मखलूक है वो इंसान है। अल्लाह ने इंसान बनाया, कितना बड़ा अल्लाह का एहसान। फिर इंसान बनाकर अल्लाह ने हमें मुसलमान के घर पैदा कर दिया, बहुत बड़ी नेमत है, बहुत बड़ी नेमत है। पैदा होते ही जन्नत का दरवाजा हमारे लिए खोल दिया गया, खुद ब खुद हम मुसलमान हो गए, हमारे कान में अजान दे दी गई, इकामत कह दी गई, हमारा नाम अब्दुल्ला रख दिया गया, हम अल्लाह के बंदे कहलाने लगे। हालांकि अभी तो दूध पीना भी नहीं आता था, सफाई नहीं करनी आती थी, चलना फिरना नहीं जानते थे, लेकिन नाम अब्दुल्ला बन गया, अल्लाह का बंदा, अल्लाह की इबादत करने वाला। इसलिए बड़ा होके करेगा इबादत, इसलिए मुसलमान होना बड़ी नेमत की बात है, बड़ी नेमत की बात है। फिर मुसलमान होने के बाद अल्लाह ने एक और करम किया कि हमने उस उम्मत में पैदा फरमाया जिस उम्मत में लौट के आने के लिए हजरत इब्ने मरियम, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने दुआएं मांगी। ये तमन्नाएं तो सब नबियों की थी, ये तमन्ना सब नबियों की थी, लेकिन क्योंकि आपके बाद आखिरी नबी ने आना था और आपको एक डिजायर थी कि अब तो करीब पहुंच चुका हूं तो अब तो मुझे चांस मिल जाए, आपने दुआ मांगी, अल्लाह ने कबूल फरमा ली। वरना प्यारे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम से तो हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने भी दुआ मांगी, लेकिन हजरत ईसा अलैहिस्सलाम चाहते थे कि शरीयत मोहम्मदी के ऊपर मैं अमल करूं, इसके फायदे होंगे, इसलिए उन्होंने कहा इसकी नमाजों में, इसके रोजे में, इसके हज ज़कात में फायदे थे। वो कौमें जो सैकड़ों साल में कमाती थी, तो ये उम्मत जो है लम्हों में वो कमा जाती है, लम्हों में उसको मिल जाता है वो मकाम। सहाबा किराम हसरत करते थे कि हमारे से पहली जो उम्मतें थी वो तो लंबी जिंदगी पाती थी, हम अल्लाह की इबादत इतनी लंबी कैसे करें। फरमाया तसल्ली करो, तुम्हारे लिए अल्लाह ने बड़ा इनाम रखा हुआ है, तुम्हें ऐसा उम्मती बनाया है उस मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की निस्बत से, अल्हम्दुलिल्लाह तुम थोड़ी सी इबादत करोगे तुम उनसे भी आगे निकल जाओगे। नजर करो कि ये कितना बड़ा एहसान है अल्लाह ताला का। और फिर उसके बाद जो बहुत बड़ा एहसान होगा हशर के दिन, अल्लाह ताला जो है फिर जब बख्शिश फरमा देंगे, अपनी रजा बता देंगे, दाहिने हाथ में नाम आमाल अता कर देंगे और हमारे गुनाहों के ऊपर सत्ताई का पर्दा चढ़ा देंगे। ये है अल्लाह ताला का प्यारा नाम मन्ना। तो अल्लाह के देखो कितने प्यारे नाम है। इसी तरह अल्लाह का प्यारा नाम हन्नान भी है। हन्नान कहते हैं कि जब कोई रूठ जाए तो ये उसको जल्दी से मना ले, ऐसी सिफ्ट है ये कि बाद लोगों में ये पाई जाती है कि अगर कोई रूठ जाए तो वो उसको रूठा नहीं रहने देते, कहते हैं यार माफी दे दो, यार बताओ तो सही तुम्हें कैसे मना ले, ऐसी कोई बात कर देंगे कि उसका जी खुश हो जाएगा, वो कहेगा चलो यार छोड़ो तुम तो हमारे दोस्त ही हो। कई लोग ऐसे होते हैं वो ऐसी सड़ी हुई बात कहते हैं कि दूसरा नाराज हो जाता है और ये कहते हैं हाँ हाँ होते फिरो, परवाह नहीं करते, उल्टा दिल दुखा कर चले जाते हैं, अपने नामामाल में परमानेंट ये बात लिखवा देते हैं कि इसने फला का दिल दुखाया हुआ है। और कुछ लोग होते हैं वो तो एक लम्हा भी नहीं बर्दाश्त करते बल्कि जिस महफिल में बैठते हैं अगर कोई ऊंच नीच हो गई महफिल के खत्म होते ही, भाई अगर कोई बात हमारे से ज्यादती हो गई हमें माफ कर दे, ऐसी माफी मांगेंगे सब लोग कहेंगे सुभान अल्लाह। अगर कोई बच्चा माँ से रूठ जाए और ऐसे ही रोने लगे तो माँ फौरन उसको सीने से लगा लेती है, उसको प्यार करती है, उसको बहला कर जो है हंसा देती है और कहती है तुम तो मेरे बेटे हो, तुम कैसे मुझसे नाराज हो रहे हो, तुम मुझसे कैसे दूर हो रहे हो। वो फौरन उसको अपने करीब कर लेती है। अल्लाह ताला 70 माओं से भी ज्यादा मेहरबान है, मोहब्बत करने वाले हैं। जब बंदे अल्लाह ताला से रूठ जाते हैं अल्लाह ताला भी उनको मनाते हैं। अल्लाह का प्यारा नाम है हन्नान, अल्लाह ताला भी उनको चाप देते हैं। और ये यो समझो कि गुनाह करने के बाद नेकी का मौका मिल जाना ये क्या चीज है, ये बहुत बड़ा चांस है कि अल्लाह ताला फिर उसको करीब कर रहे हैं। गफलत करी नमाज पढ़कर इंसान चला जाता है, अल्लाह फिर लौट कर उसको मस्जिद आने की तौफीक अदा फरमा देते हैं। अच्छा चलो कोई बात नहीं, आते तो रहोना, ये अल्लाह का मनाना है रुके हुए इंसानों को। 100 साल का काफिर अगर कलमा पढ़ लेता है अल्लाह उसको मना देते हैं, सारे गुनाहों को माफ फरमा देते हैं और इसको अपने सीने से लगा देते हैं। सुभान अल्लाह। अलैस अल्लाह बिअहकम अलहाकिमीन, क्या अल्लाह ताला तमाम हाकमों से बड़ा हाकम नहीं है? आप अंदाजा तो करो कि इस बंदे के लिए क्या अल्लाह ताला काफी नहीं है कि ये अल्लाह ताला को याद न करे, अल्लाह की तस्बीह न करे। हालांकि फरमाया वइन मिन शैइन इल्ला युसब्बिहु बिहम्दिहि वलाकिन ला तफ़क्कहून तस्बीहहु। फरमाया कायनात की हर चीज तस्बीह करती है, अल्लाह की याद करती है, उसकी हम्द के साथ उसको याद करती है, लेकिन तुम उसकी तस्बीह को समझते नहीं हो। आज किताबों में लिखा कि एक परिंदा अल्लाह की याद से जब गाफिल होता है तो शिकारी उसको शिकार कर लेता है। एक लम्हे के लिए अगर वो याद इलाही से गाफिल होता है तो इस परिंदा का शिकार हो जाता है। एक इंसान अगर एक लम्हे के लिए अल्लाह ताला से गाफिल होगा तो शैतान उसका शिकार कर लेगा। तो ये समझने वाली बात है, दरख्त है अल्लाह ने ऐसे बनाए कि क़याम में खड़े हुए हैं, जैसे हम नमाज में खड़े होते हैं ऐसे दरख्तों का हाल है कि वो खड़े हुए जो है अल्लाह की तस्बीह कर रहे होते हैं, झूम रहे होते हैं, वाह वाह सुभान अल्लाह, कभी दाएं कभी बाएं कभी आगे कभी पीछे सुभान अल्लाह, जैसे मस्त खड़े होते हैं दरख्त। चौपाई जो है चार पांव वाले जानवर रुकू की हालत में सारी जिंदगी चलते रहते हैं, अपने परवरदिगार को याद करते रहते हैं, उनको अल्लाह ताला ने बनाया ही ऐसा है कि वो इसी हाल में ही रहते हैं। घोड़ा सारी रात खड़ा रहता है, बैठता ही नहीं है, तो अल्लाह ने उनको ऐसा बनाया। नींद भी आती है तो खड़े खड़े सोता है। इसी तरह कीड़े हैं, मकोड़े हैं, जीवाणु होते हैं, इंसेक्ट्स होते हैं, हर वक्त इनका माथा जमीन पर लगा हुआ है, زمین پہ کرار کرتے ہیں ایسے جیسے کوئی سجدے میں پڑا رہتا ہے. یہ چاہے کہ ہم سیدھے کھڑے ہو جائیں تو یہ کھڑے نہیں ہو سکتے, اللہ نے بنایا ایسا ہے ان کو, یہ ان کی تسبیح ہے اللہ تعالیٰ کے سامنے یہ اپنی عاجزی کا اظہار کر رہے ہوتے ہیں. کئی کیڑے تو تیز تیز چلتے ہیں اور کچھ انسیکٹ ایسے بھی ہوتے ہیں, کیڑے ہوتے ہیں جو آہستہ آہستہ چلتے ہیں. اتنی کم سپیڈ میں انہوں نے اپنی جان بھی بچانی ہوتی ہے, اللہ نے ان کو سپیڈ نہیں دی. چوٹی ہے وہ بھی بھاگ جاتی ہے, لیکن کچھ کیڑے ہوتے ہیں وہ اتنا تیز بھی نہیں بھاگ سکتے جتنا چوٹی بھاگ سکتی. اب دیکھو ایسی عاجزی, ایسی کیفیت, ایسا جھکنا اللہ تعالیٰ نے ان کیڑوں کے اندر پیدا کر دیا. انسان کو بھی چاہیے کبھی تو وہ ایسا سجدہ کرے کہ اس کو واقعی اپنے بارے میں احساس ہو کہ میں بھی جانوروں میں سے ایک جانور ہوں. اللہ چاہتے تو مجھے ایک کیڑی بنا دیتے, چھوٹا سا کیڑا ہوتا, گزرنے والے کو پتہ ہی نہیں چلتا, وہ اپنا پاؤں میرے اوپر رکھ دیتا اور میری جان چلی جاتی. جانے ہمارے پاؤں کے نیچے آ کر کتنے کیڑے مر چکے ہوں گے, ہمیں پتہ ہی نہیں ہے. اس لیے کہ ان کی اہمیت ہی نہیں ہے. کبھی اخبار میں نہیں لکھا ہوا دیکھا کہ بھائی پلا بندے کے پاؤں کے نیچے آ کر ایک کیڑا ہلاک ہو گیا, ایسے نہیں لکھا ہوتا. ایک نہیں لاکھوں کاکروچ کو آپ مار دیں, اخبار میں کوئی بھی اس کی خبر ہی نہیں آتی کہ فلاں بلڈنگ میں انہوں نے ایسا سپرے کیا کہ اتنے کاکروچ مارے گئے. لاکھوں مر جاتے ہیں, کوئی پوچھتا ہی نہیں ہے. اسی طرح انسان بھی جو ہے وہ اگر اللہ ایسا بنا دیتا تو کوئی نہ پوچھتا اس کو, لیکن اللہ نے انسان کو ایسی عزت دی ہے کہ فرمایا اگر ایک بندہ جو سبحان ربی الاعلیٰ پکارتا ہے, یعنی سجدہ کرتا ہے, ایمان والا ہے, اللہ کا دوست ہے, ایسے نیک بندے کو اگر کوئی ناحق قتل کر دے گا تو یوں سمجھو کہ اس نے پوری انسانیت کو قتل کر دیا, سب کا نقصان کر دیا. تو اللہ نے عزت عطا فرمائی ہے. اسی طرح پہاڑ ہیں, ہر وقت بیٹھے رہتے ہیں, چلتے پھرتے نہیں ہیں. جیسے اتحیات میں ہم بیٹھتے ہیں تو یہ پہاڑ بھی اسی طرح بیٹھ کر اللہ کی تسبیح کرتے ہیں, پرندے بھی اسی طرح بیٹھ کر اللہ کی تسبیح کرتے ہیں. تو معلوم ہوا فَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ کہ سب اللہ کی تسبیح کر رہے ہیں, وَلَٰكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ لیکن تم ان کی تسبیح کو سمجھتے نہیں ہو. ان کی تسبیح کرنے کا اپنا طریقہ ہے, تمہیں نہیں سمجھ آتی. ہاں تمہیں تمہارے انداز کی تسبیح بتا دی گئی. تم اشرف المخلوق ہو, ایسا نہ ہو کہ درخت پتھر لکڑی تو اللہ کی تسبیح کرنے والے بن جائیں اور تم بندے ہیں وہ تمہارے اندر بندگی پیدا نہ ہوئی. تم اپنے آپ کو اشرف المخلوق کہتے ہو, تم سوئے رہو اور باقی مخلوق تسبیح کرتی رہے, کتنی شرم کی بات ہے, کتنی شرم کی بات. اور انسان کو تو اللہ نے کیا ہی فضیلت دی ہے, واہ بھائی واہ. انسان کی زندگی میں اعمال کی بڑی قدر و قیمت ہے کہ بندہ یہ اعمال کرتا ہے اور للہ کرتا ہے, اللہ کے لیے کرتا ہے, نیت خالص ہوتی ہے, اس کو بھائی بڑا اجر ملتا ہے, اس کو بڑا اجر ملتا ہے. ایک بندے نے اگر زندگی میں سبحان اللہ پڑھا اور اس کی تسبیح سبحان اللہ پڑھنے میں دوسرے بندے سے ایک تسبیح کم ہے اور دوسرے نے ایک تسبیح زیادہ پڑھ دی, اگر ساری زندگی کا نام اعمال دیکھیں کہ بھائی ابو بکر نے जो है इतने मरतबा, यानी 1 लाख मरतबा चलो तस्बीह पढ़ी फलां सुभान अल्लाह की, तो अब्दुल रहमान ने 1,01,000 मरतबा तस्बीह पढ़ी सुभान अल्लाह की। है जी, तो बात सुनो, इसका दर्जा एक गुना बढ़ गया। और ये जो है एक जिसने 1 तस्बीह कम पढ़ी है वो उससे नहीं आगे जा सकता, क्योंकि फरमाया कि जिसने 1 मरतबा सुभान अल्लाह कहा, अल्लाह ताला उसको जन्नत में कैसा दरख्त अता फरमाएंगे कि जिसके साये में अरबी नस्ल का घोड़ा अगर 500 साल भी दौड़ता है उसका साया खत्म नहीं होता। अरबी नस्ल का घोड़ा कितनी देर तक दौड़ता है? 500 साल। इतनी एडिशनल प्रॉपर्टी उसको मिल गई 1 मरतबा ज्यादा सुभान अल्लाह कहने पर। जब ये नाम अमाल जो है इस पर इनाम मिलेगा तो क्या होगा, जिसने 1 मरतबा कम सुभान अल्लाह कहा होगा वो सब हसरत करेगा, वो कहेगा काश के मैंने सारी जिंदगी इसी काम में लगा दिया, सारी जिंदगी में तस्बीह करता, मैं एक लम्हा भी जाया ना करता। अल्लाह तेरे नाम बड़ी अजमत वाले नाम है, इसलिए जब एक बच्चा पैदा होता है तो पैदा होते ही अल्लाह ने उसके कान में अजान कहलवाई, उसके अकामत कहलवाई, उसको ये इंफॉर्मेशन भेज दी अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर। तुम्हें क्या करना है, उस बड़े अल्लाह की इबादत करनी है। उससे लेकर बच्चे की वो उम्र जब तक उसने बोलना होता है उस वक्त तक माँ बाप मेहनत करते रहते हैं और कोशिश करते हैं कि ये बच्चा अल्लाह का नाम बोले। लिहाजा उसको जब भी खेलते हैं प्यार करते हैं उसको कहते हैं अल्लाह अल्लाह अल्लाह, हत्ता के बच्चा लाखों मरतबा इस अल्लाह 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 को सुनता है, ये नाम उसके दिल और दिमाग में रजिस्टर हो जाता है। लिहाजा जब ये बच्चा पहली मरतबा बोलता है तो साफ जाहिर है जिस नाम को सबसे ज्यादा सुना होगा वही नाम उसकी जुबान से निकलेगा अल्लाह। जिन घरों में टीवी होती है, टीवी नहीं टीवी है क्योंकि टीवी की तरह होता है वो भी बीमारी है, तो या जिनके घर म्यूजिक वाले कॉइल लगे होते हैं, अब ये बच्चा अल्लाह का नाम कैसे लेगा, यहां पर फरिश्ते ही ख्याल से फरिश्ते चले जाते हैं, तस्वीर लगी होती है फरिश्ते चले जाते हैं, कुत्ता घर में रखा हुआ है फरिश्ते चले जाते हैं। तो अब देखो अगर ऐसा इंतजाम करेंगे, हिंदी फिल्में देखेंगे सारे फैमिली वाले बैठ के इकट्ठे, तो बच्चा अल्लाह का नाम लेगा या नाचने वालों का नाम लेगा? तो क्या होगा अगर ये बच्चा अल्लाह का नाम लेता है, अल्लाह ताला माँ बाप के सारे गुनाह माफ कर दे। यानी जितनी दफा माँ बाप ने अल्लाह 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 किया कबूल हो गया, है कबूल हो गया। अगर लाखों मरतबा वो अल्लाह अल्लाह करते रहे करते रहे करते रहे, बच्चे को सुनाते रहे सुनाते रहे, और बच्चे ने भी अल्लाह कह दिया, ये पिछला सारा हिसाब कबूल हो गया। वाह वाह, मेहनत की थी माँ बाप ने, अल्लाह ने अजर कह दिया, इस बच्चे ने अल्लाह कहा तेरे पिछले सारे गुनाह माफ। चल ये अल्लाह के प्यारे नाम की बरकत है। हजरत अहमद अली लाहौरी रहमतुल्लाह अलैह एक मरतबा गाड़ी पर चढ़ने लगे, एक पांव गाड़ी के अंदर रख लिया, दूसरा पांव उठाने लगे, एक आदमी गरीब हुआ और कहने लगा हजरत इससे पहले कि आप अपना दूसरा पांव गाड़ी में रखें क्या आप मुझे कुरान मजीद का खुलासा बता सकते हैं? कैन यू समराइज होल कुरान इससे पहले कि आप अपना दूसरा पांव भी गाड़ी में दाखिल कर दें, तो आपने फरमाया अल्लाह अल्लाह कर, किसी से ना डर, है नहीं? बस आपने ये फिक्र उसको कहा और अपना दूसरा पांव उठाया और गाड़ी में रख दिया। कि क्या करना है, कुरान का मकसद सारा क्या है? और हजरत अहमद अली लाहौरी रहमतुल्लाह आशिक कुरान, सुभान अल्लाह, उनका कुरान पढ़ना, उनकी तफसीर कहना, ओ हो, उनके वाकयात सुनो, हैरान हो जाओगे। हमारे हजरत गुलाम हबीब रहमतुल्लाह ने उनसे कुरान पढ़ा था, आशिक कुरान थे वो, सड़क पर खड़े हो जाते थे हजरत गुलाम हबीब रहमतुल्लाह और लोगों से कहते थे ए लोगो इधर आओ, मैं तुम्हें अल्लाह का कलाम सुनाऊ। सुभान अल्लाह, ऐसी मोहब्बत थी उनको कुरान से, कुरान पढ़ते चले जाते थे। और बाद बयानात उनके ऐसे हैं कि जिसमें उन्होंने कुरान से कुरान की तफसीर की है और अपना एक लफ्ज भी नहीं बोला। उलमा बैठे होते थे, सुन सुन के हैरान होते थे, एक आयत पढ़ते थे उसके तर्जमे में दूसरी आयत पढ़ते थे, फिर उधर से और आयत पढ़ते थे, फिर और ऐसा स्ट्रॉन्ग कुरान था। उनका उस्ताद कौन था कुरान पढ़ाने वाला? हजरत अहमद अली लाहौरी रहमतुल्लाह, उनसे उन्होंने कुरान पढ़ा था। तो उन्होंने क्या कहा कि भाई अल्लाह अल्लाह कर, है जी, और उसके साथ ही बता दिया किसी से ना डर, है जी। हमारा मसला भी यही होता है, हम डरते हैं किसी से, अल्लाह अल्लाह कभी छोड़ देते हैं, हम डरते हैं जॉब चली जाएगी, नमाज कैसे पढ़ू, है जी। हम डरते हैं कि हम अगर नजर आएंगे नेक मुसलमान तो पता नहीं लोग हमारे साथ क्या करेंगे, तो मैं किसी से ना डाल, हत्ता के शैतान से भी ना डाल। क्यों? कि इतनी अल्लाह अल्लाह तो करेगा, एक वक्त आएगा अल्लाह तुझे महफूज कर देंगे, अल्लाह अपनी हिफाजत कर देंगे। तो तू कर अल्लाह अल्लाह, यही तो अल्लाह चाहते हैं। हल्का अलम लहू सनिया, अल्लाह फरमाते हैं क्या अल्लाह के नाम जैसा किसी का नाम है? वाह वाह, कुर्बान जाओ, अल्लाह के नाम जैसा किसी का नाम नहीं है। तो अल्लाह अल्लाह करना चाहिए जिंदगी में, कसरत के साथ जिक्र हो। हुज़ूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो हर वक्त जिक्र करते थे, हर वक्त जिक्र करते थे। हम सवाल करते हैं कि आप हर वक्त जिक्र करके दिखाएं, है जी, ये नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है, आप हर वक्त जिक्र करते थे, है ना। तो सूफिया क्या कहते हैं, भाई आप भी जिक्र करो हर वक्त। आप पूछते हैं क्यों करूं, भाई अल्लाह के नबी की सुन्नत थी, है जी, तो करो। हम कहते हैं अभी मुराकबा करो, कहते हैं मुराकबा, इसकी हदीस बताओ, इसके लिए बताओ, है जी, तो भाई हदीस बताओ। मुराकबा समझने नहीं आता, लेकिन हर काम को सीखने के लिए भाई कोई ना कोई उस्ताद को चाहिए, कोई माहिर चाहिए। वो माहिर ही वो फन सिखाता है, बकायदा उसकी मश्क कराता है। प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट। वकूफ़ कल्बी और मुराकबा, ये जिक्र करने के लिए टूल है, इससे इंसान को जिक्र करना आता है, दिल में अल्लाह की याद बैठती है। मकसूद तो है अल्लाह अल्लाह करना। एक बुजुर्ग से किसी ने पूछा हर वक्त ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ना, पढ़ते रहना, किसी हदीस में साबित है? अच्छा, अब कुछ लोग तो होते हैं वो फतवे मांगते हैं, और जो सूफिया होते हैं तो बल्कि इनका मामला कुछ और होता है, ये तो दिल की कैफियत पे चलते हैं, है ये यहाँ इनके यहाँ तकवा होता है। फतवे में तो चलो भाई एक बात आई कि भाई आपने फला चीज कर सकते हैं, उसमें मुश्तबे चीजें भी होती हैं, आप कर भी सकते हैं नहीं भी कर सकते, जो अल्लाह अल्लाह करने वाला होगा वो कहेगा भाई ना भाई ना, अगर दिल में डर आ गया है तो मैं तो नहीं करूंगा। ऐसी है जैसे आपकी वो स्लिपरी रोड है, तो किसी ने कहा भाई हाँ है तो स्लिपरी लेकिन आप गुजर जाएंगे, तो फतवा क्या हुआ, आप गुजर जाएंगे खैर से और भी लोग गुजर रहे हैं, फतवा नहीं है। और जो बंदा होगा मोहताज वो कहेगा ना भाई ना, मैं हजी करवानी है, मैं नहीं गुजरूंगा यहाँ से। वो कहेगा भाई लंबा चक्कर काट के जाना पड़ेगा, अच्छा कोई बात नहीं मैं लंबे चक्कर से जाऊंगा, मैं यहाँ से नहीं गुजरूंगा। तो ये क्या है, ये तकवा है। तो सुभान अल्लाह, अब इन्होंने देखो कैसी बात समझाई इन्होंने, क्या एक हदीस को तुम मानते हो जिसमें कहा गया कि मौत के वक्त कलमा तलकीन करना चाहिए, जो बंदा मौत के करीब होता है उसके सामने कलमा पढ़ते हैं, इस बात को तो मानते हैं, इस हदीस को मानते हैं। तो कहा ये तो मानते हैं, तो हमने सुनी हुई है माशाल्लाह। तो कहने लगे भाई मैं तो अपने नफ्स के ऊपर अपने बारे में ये सोचता हूँ किसी वक्त की मौत आ जाए तो मैं अपने आप को समझाता चला रहता हूँ ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह, पता नहीं किस वक्त कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह हो जाएगा। तो फरमाते हैं किसी वक्त भी आखिरी कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह हो सकता है। तो अब देखो माशाल्लाह इन्होंने कैसे अपने नफ्स को तलकीन की हुई है कि किसी वक्त भी मौत वाकिया हो सकती है। दूसरी चीज यह है कि दिल के अंदर वो कहने लगे जन जर और जमीन के बुत सजे हुए हैं, किसी को किसी हसीन चेहरे से मोहब्बत हो गई, किसी को माल से मोहब्बत हो गई, किसी को अपनी प्रॉपर्टी से मोहब्बत हो गई, तो कहते हैं मैं इन बुतों को तोड़ने के लिए ला इलाहा इल्लल्लाह की ज़र्बे लगाता हूँ। अगरचे बुत हैं जमात के आस्तीनों में, मुझे है हुक्म अज़ां ला इलाहा इल्लल्लाह। तो देखो अब ये बात समझ में आई कि हर वक्त ला इलाहा इल्लल्लाह, भाई आजकल तो अजीब बात है, हमने अपने जमीर को मुतमईन किया हुआ है कि मेरे पास फुर्सत नहीं है। आखिर मुराकबा भी तो एक काम है, अगर आप बाकी काम कर रहे हैं भले हम कहते हैं आप बड़े मसरूफ हैं बड़े काम कर रहे हैं, तो भाई आप मुराकबे को अल्लाह को याद करने को काम ही नहीं समझते, ये कोई काम ही नहीं है, ये तो अजीब सी बात हो गई। ये जिक्र और मुराकबे को आखिरत के काम समझकर अहमियत देनी चाहिए। जब हम समझ गए कि आखिरत मौजूद है, जन्नत ईमान वालों के लिए है, और एक मर्तबा सुभान अल्लाह पर इतना इनाम मिलता है, फिर गफलत की क्या जरूरत है। वहां जाकर हसरत होगी हाय काश कि हमें कुछ वक्त और मिल जाता, हम याद इलाही में गुजारते। अगर गर्म चाय पीने का मजा आता है, ठंडी ठंडी आइसक्रीम खाने का मजा आता है, तो भाई दुरूद शरीफ पढ़ने का मजा क्यों नहीं आता। अल्लाहुम्म सल्ली अला सय्यिदना मुहम्मद व अला आले सय्यिदना मुहम्मद व बारिक वसल्लम। आज तो मजलिसें कायम हैं, आज तो ये अल्लाह अल्लाह की बातें हो रही हैं, इससे फायदा उठा लो इससे पहले कि वो लोग दुनिया में आना बंद कर दें या अल्लाह ताला उन लोगों को जमीन से उठा ले, तो फिर हमें वो महफिलें ना मिले। तो आज हीले बहाने और इन मजालिस से महरूम होने की जरूरत नहीं है, बल्कि इन मामूलात को अहमियत दें, इनकी पाबंदी करें, जो चीजें बताई गई इन पर अमल करें। एक आरिफ का कौल है कि जिसने अपने वालिद का जनाजा उठाया, जिसने अपने बड़ों को मरते हुए देखा और उनको कफन दिया, उन पर जनाजा पढ़ा, उनको दफनाया, उस बंदे के लिए ये बात इबरत के लिए काफी है कि अगर मेरे बड़े इस दुनिया से चले गए, मुझे भी इस दुनिया से जाना है, اور اگر اس کو یہ بات بھی نہیں ہلاتی اور یہ بات سمجھ میں نہیں آتی تو اس کے دل کے سخت ہونے کے لیے یہی دلیل کافی ہے، اس کا دل سخت ہو چکا ہے. اب دل سخت ہو جائے، جیسے زمین سخت ہو جاتی ہے تو اس کو پانی دیا جاتا ہے نرم کرنے کے لیے، اور اس انسان کے دل کی سختی کو دور کرنے کے لیے ذکر کا پانی ملتا ہے جس سے آنکھوں سے آنسو نکلتے ہیں. سبحان اللہ، ایک وقت آئے گا اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو دیکھ کر مسکرائیں گے اور وہ اللہ تعالیٰ کو دیکھ کر مسکرائیں گے. خود ہی سوچ لو کہ ایسے لوگ کون سے ہوں گے جن کو اللہ دیکھ کے مسکرائے گا. کون ہوں گے ایسے لوگ؟ آپ خود ہی سوچو جس نے اپنی زندگی ساری کی ساری اللہ کے لیے گزار دی ہوگی، اسی کو دیکھ کے اللہ تعالیٰ بھی خوش ہوں گے. وہ چند ساعتیں جو صحبت دلبر میں گزری، وہی ساعتیں ہیں میری زندگانی. جو لمحات ہم نے اللہ کی یاد میں گزار لیے ہیں، یہ ہماری زندگی ہے، اور جو غفلت میں گزاری یہ شرمندگی ہے. اس پہ پچھتاوا ہوگا، افسوس ہوگا، لوٹ کے آنے کی اجازت نہیں ہوگی. میرے بھائیوں، یہ وقت ہے جو اللہ نے عطا کیا ہوا ہے. ذکر کے لیے اور ذکر کی حلاوت کو پانے کے لیے پیٹ کا خالی ہونا ضروری ہے. پیٹ کا خالی ہونا ضروری ہے. ہم اجازت دیتے ہیں کہ بھائی چلو بھائی کھا لو پی لو مزے کر لو، ہے جی، لیکن سچی بات ہے کتابوں میں کیا لکھا ہوا ہے؟ بھرے پیٹ کے ساتھ ذکر کی حلاوت اور اس کا مزہ نہیں آتا. کچھ عرصے سے ساجس کو تکلیف ایسی ہو گئی کہ کھانا پینا کم ہو گیا. یقین جانے ذکر تو پہلے بھی کرتے تھے، لوگوں کے خوشی کے لیے کھاتے پیتے بھی تھے. کسی کے گھر چلے گئے، دعوت دے دی، گھر والوں نے کوئی اچھی ڈش بنائی ہوئی ہوتی ہے، کھا لیتے تھے. اللہ اکبر. اب جو ہے اللہ نے تکلیف ایسی دے دی کہ کھا پی نہیں سکتے. ہم دعا مانگتے ہیں، ہمارے ایک دوست نے کہا کہ آپ دعا مانگتے ہیں اللہ میاں زبردستی نیک بنا دے. اللہ نے آپ کو زبردستی ذکر کی حلاوت کا مزہ دے دیا ہے. شکر گزاری کرنی چاہیے، الحمدللہ. یہ بیماری بھی نعمت ہے جی، یہ بیماری جو ذکر کی حلاوت کا مزہ دے دے وہ نعمت ہے. تو بھائی جب سے یہ نیت کر لی کہ ہم اللہ کے لیے بھوکھے رہیں گے، اس سے بیماری بھی ٹھیک ہو جائے گی، اللہ کی دیوی نعمت ہے، الحمدللہ، ذکر کا مزہ آنے لگ گیا ہے. ذکر پہلے بھی کرتے تھے، اب کرتے ہیں مزہ اور پاتے ہیں. تو میں نے پھر افسوس کیا اپنے اوپر کہ میں لوگوں کو کہہ دیتا تھا کہ بھائی یہ جو ہے آپ کھانے پینے کی اجازت ہے، اب میں کہتا ہوں بھی نہ کھاؤ، احتیاط کرو، بھوکھے رہو. اور پھر جو بھوک کا مزہ ہے اور اس میں جو یاد الہی کا مزہ ہے، واہ واہ، یہ پیٹ بھرے ہوئے کو مزہ نہیں حاصل ہوتا. تو بھائی ذکر کتنا کرنا ہے؟ ذکر بہت کرنا ہے، اللہ کو ہر وقت یاد کرنا ہے. یہ کم ذکر کرنا اور ایک ہے کوئی ذکر ہی نہ کرنا، ہے جی. کم ذکر کرنے والے کو بھی اللہ نے منافق کہا ہے. کم ذکر کرنے والے کو بھی اللہ نے منافق کہا. سنو قرآن، ولا یذکرون اللہ الا قلیلا. کوئی بات ہے یاری دوستی ہے، کوئی محبت ہے، یہ تھوڑا سا ذکر کرتے ہیں. ولا یذکرون اللہ، اللہ کا ذکر کرتے ہیں کتنا؟ الا قلیلا. یہ بھی منافقت ہے. اصلی منافق تو نہیں ہے جو ہم فتوا دے دیں کہ فلاں منافق ہو گیا، ایسا تو نہیں ہے. لیکن بہرحال یہ بھی ایک بے وفائی ہے، یاد بھی کرتے ہو تو تھوڑا سا یاد کرتے ہو. یار یہ بھی کوئی ہے بات. ذکر کرو تو ذکر میں کثیر کرو. الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبهم، کھڑے ہوئے، بیٹھے ہوئے، لیٹے ہوئے، हाँ मेरे मौला, वाह, जब तू नहीं भूलता तो हम क्यों भूल गए हैं। तू मालिक है, हम तो गुलाम है, तू हमारा आका है, तू हमारा परवरदिगार है, हम तेरे बंदे हैं। तो क्या होना चाहिए? हथकारबल और दिल यारबल होना चाहिए। काम काज करते हुए दिल अल्लाह की याद में होना चाहिए। ये दिलों की गजा है बल्कि दिलों की शिफा है। इसको अपना फूड बनाएं और इसी से ही इंसान का इलाज होगा। आप देखें, कभी भी किसी वक्त गफलत आ जाए, किसी महफिल में बैठे थोड़ी देर, आप हंसी मजाक जोक करके देख लें, आपको लगेगा आपका हाल खराब हो गया, आपका हाल खराब हो गया। आपने थोड़ी देर जिक्र से गफलत करके देख लें, वो लोग खास तौर पर जो जिक्र करने वाले हैं, वो महसूस करेंगे कि वाकई जो है चंद लम्हे गफलत के साथ मेरी कल भी कैफियत बदल जाती। हजरत मुफ्ती मोहम्मद शफी रहमतुल्लाह फरमाया करते थे कि जिक्र खफी करो या जिक्र जाहरी करो। जिक्र जाहरी होता है कि जुबान से जिक्र किया जाता है, जिक्र खफी दिल में जिक्र किया जाता है, मगर गाफिल हरगिज ना रहो। बंदे को गाफिल नहीं होना चाहिए। बस ये याद रखे यार दोस्त, जितना दुनिया में रहना है उतना यहाँ के लिए कोशिश कर, और जितना आखिरत में रहना है उतनी वहां के लिए कोशिश कर। वहां की जिंदगी ना खत्म होने वाली जिंदगी है, लिहाजा वहां के लिए उतनी मेहनत करनी चाहिए। जो बंदा याद इलाही में लग जाता है, अल्लाह ताला उसके दिल से दुनिया की मोहब्बत को निकाल देते हैं। बजाहिर माल पैसा उसके पास होता है, तो माल पैसे को खर्च भी करता है, लेकिन ये माल उसके कदमों के नीचे होता है, उसके कंट्रोल में होता है। टेम्पटेशन जो उसको हराम माल कमाने के लिए मजबूर भी कर देती, कहते जी क्या करूं, बच्चों के लिए कर रहा हूं, बच्चों को हराम खिला रहे हो, अफसोस तुझ पर कि तूने सबसे गंदा माल अपने बच्चों को खिलाया, जिसको तू अपनी औलाद समझता है सबसे गंदा माल उसको खिलाता है, बच्चों को जहर खिलाने वाली बात है। तो जो बंदा अल्लाह ताला की मोहब्बत का शिकार हो जाता है, अल्लाह उसके दिल से दुनिया की मोहब्बत को निकाल देते हैं। और जो बंदा दुनिया से मोहब्बत करता है, अल्लाह उसके दिल से अपनी मोहब्बत को निकाल देते हैं। ऐसे बंदे के लिए शरीयत की खिलाफ वर्जी ऐसे हो जाती है जैसे हाथ में मक्खी बैठे और आप उड़ा दें, ऐसे शरीयत की बात आई ऐसे उड़ा देगा। मक्खी उड़ाना कभी आसान समझेगा, सुन रहा होगा कि नमाज फर्ज है, अकीम सलात, बैठा रहेगा, अजान हो रही होगी, कहेगा कि भाई मेरे कपड़े नापाक है। बताओ मर्दों को भी हैज नफाज होता है? पूछे तेरे कपड़े नापाक कैसे हो गए, क्या तेरे लिए जरूरी नहीं था कपड़ों को पाक रखना, बदन को पाक रखना, भारत का हासिल करना? औरतों के तो मसाइल है, तो ये पता नहीं कहां से सुन लेता है, 6 महीने पहले मिले मेरे कपड़े नापाक, 6 महीने बाद में मिले फिर मेरे कपड़े नापाक। ये आजकल अंजाम चल रहे होंगे, बंदे चुप कर जाते हैं, अच्छा भी ठीक है, इन्ना लिल्लाह वा इन्ना इलैहि राजिऊन। भला ये भी कुछ बहाना बनाने वाला है? हैरत होती है कि भी मर्द है लेकिन ऐसी बात कह देता है, अफसोस होता है उसके ऊपर। हाय हाय, अजीब अजीब, ये नहीं सोचते अल्लाह तो देखते हैं, अल्लाह तो जानते हैं, पक्का असूल समझ लें। जो बंदा अल्लाह ताला को याद करता है उसको अल्लाह ताला की मोहब्बत नसीब होती है। जिस चीज को आप तस्करा करते रहेंगे उसके दिल में मोहब्बत पैदा हो जाएगी। कुरान मजीद में जहां कहीं भी अल्लाह की याद की बात आई है, अल्लाह का तस्करा आया है, वहां सिर्फ जिक्र करने का हुक्म नहीं आया बल्कि जिक्र के साथ कसरत का हुक्म साथ आया। पूरा कुरान मजीद उठा के देख लो, जिक्र कसीर, जिक्र कसीर, मुसलसल کثرت اس کے ساتھ ہے کہ اللہ کو بہت یاد کرو. جی چار موسم ہوتے ہیں, سردی کا, گرمی کا, بہار کا, خزاں کا, ہے جی, بچپن ہوتا ہے, جوانی ہوتی ہے, لڑکپن ہے اور بڑھاپا ہے جی. ہر موسم میں اللہ کو یاد کرو. یہ نغمہ فصل گل و لالا کا نہیں پابند. یہ نغمہ, یہ جو لا الہ الا اللہ ہم پڑھتے ہیں, اللہ اللہ کرتے ہیں, یہ جو سانگ ہے, یہ نغمہ جو پرندے بھی کرتے ہیں, وہ بھی جب دیکھتے ہیں نا فصل گل و لالا کو, پھولوں کو دیکھتے ہیں نا, تو ان کی بھی آواز چر 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 آواز آتی ہے جی. بس بھی کرتے ہیں وہ بھی, وہ پھولوں کے ساتھ محبت کرتے ہیں, وہ برڈز, ایسے برڈز ہوتے ہیں رنگ برنگ, خود بھی پھول لگتے ہیں اور پھولوں کے دیوانے ہوتے ہیں اور پھولوں میں رہتے ہیں, پھولوں کے ساتھ دیکھ کر ان کا جی جو ہے خوش ہوتے ہیں اور آوازیں نکالتے ہیں, چٹ چٹ کی آوازیں ہوتی ہیں. تو ہم ذکر کرنے والے یہ نغمہ فصل گل و لالا کا نہیں پابند ہے جی. ان کو وہ پھول اور وہ گارڈن نہیں چاہیے اس سانگ کے لیے جی, بلکہ کیا ہے, بہار ہو کہ خزاں لا الہ الا اللہ جی. جو ذکر کرنے والا ہے اس کی زندگی خوشیوں بھری ہو چاہے غموں سے بھری ہوئی ہو, اس کا نغمہ چلتا رہتا ہے, کبھی صبر میں, کبھی شکر میں, کبھی شکر میں, کبھی صبر میں جی. یہ نغمہ فصل گل و لالا کا نہیں پابند, بہار ہو کہ خزاں لا الہ الا اللہ. اللہ اللہ کرنا بندے کو اللہ تعالی سے ملا دیتا ہے. معمولی کام نہیں, یہ بہت بڑا عظیم کام ہے. ظفر آدمی اس کو نہ جانے گا, وہ ہو کتنا صاحب فہم و ذکا, جسے عیش میں یاد خدا نہ رہی, جسے تیش میں خوف خدا نہ رہا. کہتے ہیں کہ اس بندے کو ہم کوئی بھی بڑا نہیں سمجھیں گے, کوئی فضیلت نہیں دیں گے, کہ جس کو اچھے حالات میں اللہ یاد نہ رہا, یا جب اس پہ مشکل حالات آئے تو پھر اس کو خدا نہ یاد رہا ہے جی. بیٹے کی شادی ہے یا بیٹے کا جنازہ ہے, اللہ کی یاد سے غافل نہیں ہے. یہ آزمائش ہے, یہ آزمائش ہے. امام اعظم ابو حنیفہ رحم اللہ اپنے وصایا میں امام ابو یوسف رحمت اللہ کو آپ نے لکھا کہ ابو یوسف آپ لوگوں میں بیٹھ کے کثرت سے ذکر کرتے رہنا. حالانکہ دیکھو یہ صوفیہ والی بات نہیں, یہ تو علماء ہے جی, کہ امام اعظم ابو حنیفہ رحم اللہ امام ابو یوسف رحم اللہ کو کیا بتا رہے ہیں کہ تم جب لوگوں میں بیٹھنا, یہ نہیں کہا فتوے دیتے رہنا, کیا کہا کہ تم کثرت کے ساتھ اللہ کا ذکر کرتے رہنا. فائدہ کیا ہوگا, لوگ آپ سے سیکھ کر ذکر کرنے والے بن جائیں گے. یہ نہیں کہا فتوے دیتے رہنا اور تم لوگوں کو فتوے بتانا, علم سکھانا اور وہ سیکھیں گے اور علم والے بن جائیں گے. یہ وصیت ہے امام اعظم ابو حنیفہ رحم اللہ کی اپنے شاگرد امام ابو یوسف رحم اللہ کو, کہ تم لوگوں میں بیٹھنا, اللہ کا ذکر کرنا کثرت کے ساتھ, تاکہ لوگ ذکر والے بن جائیں. حدیث شریف میں آتا ہے کہ جو ذکر کرتا ہے اور جو ذکر نہیں کرتا, اس کی مثال زندہ اور مردہ شخص کی ہے. زندہ ہوتا ہے بولتا ہے بھائی, مردہ ہوتا ہے پڑا ہوتا ہے. آپ اسے کہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ, کوئی جواب نہیں دیتا. زندہ ہوتا ہے کسی کی مدد کرتا ہے, مردہ ہوتا ہے کسی کی مدد نہیں کرتا. زندہ ہوتا ہے نیک اعمال کر لیتا ہے, مردہ ہو جاتا ہے نیک اعمال نہیں کرتا. جو ذکر سے غافل ہو جاتا ہے, جو سمجھو کہ وہ عبادت سے محروم ہو جاتا ہے. یہ آپشنل چیز نہیں ہے, کر لو کر لو, نہ کرو نہ کرو. بھائی اللہ کی دی ہوئی جان ہے, اللہ سے قربان ہے, جان دی ہوئی اسی کی تھی, حق یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا جی. اللہ نے یہ جان دی تھی, اللہ نے وقت دیا تھا, کسی کے مقدر میں کچھ سال اور کسی کے مقدر میں کچھ سال. कोई 40 साल, कोई 50 साल, कोई 60-70 साल, या 80-90 साल गुजार गया, ये अल्लाह की दी हुई एक नियामत है कि जितने साल इबादत कर गया कर गया, अल्लाह की तौफीक, जब मौत आ गई तो फिर ये जो है याद से महरूम हो गया। आजकल कुछ लोग ऐसे होते हैं वो कहते हैं हम किसी की नहीं मानते, हम किसी की नहीं मानते, क्या मतलब है इसका कि भाई हम किसी की तकलीफ नहीं करते, किसी के पीछे नहीं चलते, अपनी मर्जी करते हैं, खुद फतवे देते हैं, खुद पढ़ते हैं और खुद समझते हैं, ये किसी की नहीं मानते है जी। और ये अपना पीर, अपना इमाम हजरत इब्न तैमिया रहमतुल्लाह को मानते हैं है जी, और हजरत इमाम इब्न तैमिया रहमतुल्लाह के बारे में लिखा है कि वो भी नमाज फजर के बाद उसी जगह बैठे बैठे जिक्र करते रहते थे, जिसको ये मानते हैं अपना इमाम, वो भी क्या करते थे, जिक्रुल्लाह, ऐसे तो इमाम नहीं बन गए थे जी। अल्लाह से कभी भी किसी बंदे से भी कोई ऐसा बड़ा काम नहीं करवाया जब तक कि वो याद इलाही ना करने वाला हो। तारीख उठा के देख ले कि अगर कोई बड़ा काम ऐसा जो बाद तक चलता रहा हो, फज़कुरूनी अज़कुरकुम, जिसने याद इलाही ना किया उसका काम खत्म हो जाता है, उसकी जिंदगी के साथ उसका नाम मिटा दिया जाता है, कितने नए कामाल कर गया समेट लिया। ये नहीं है कि उसके पीछे वो काम छोड़ जाए जो चलता रहे, ये चलते रहने वाला काम फकत अल्लाह ने किसको अता किया है, जिन्होंने सारी जिंदगी अल्लाह की याद की है। इनको हजरत नूह अलैहिस्सलाम की जिंदगी मिल जाए तो ये अल्लाह की याद करते करते हजरत नूह अलैहिस्सलाम की जिंदगी भी गुजार देंगे। अगर ये हमेशा जिंदा रहे तो इन्होंने दिल में इरादा किया होता है कि हम हमेशा अल्लाह को याद करते रहेंगे, इनके सुबह इनके शाम हर वक्त अल्लाह के नाम, जो मुस्तरब है उसको इधर इल्तफात है, आखिर खुदा के नाम में कोई तो बात है जी, अल्लाह के नाम में कोई तो मजा है। अल्लाह 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 ईचे शीरी हसनाम, अल्लाह अल्लाह ईचे शीरी हसनाम, शीर शकर में शोर जानम तमाम। अल्लाह सोने का इतना प्यारा नाम है कि इसको तो बस रटते ही रहे, रटते ही रहे, रटते ही रहे, बस दो रंगी छोड़ दे यक रंग हो जा, दो रंगी छोड़ दे और यक रंग हो जा, सरासर मोम हो जा या संग हो जा, तो करने वाला ये काम है। मोहब्बत का जनू बाकी नहीं है, मोहब्बत का जनू बाकी नहीं है, वो दिल वो आरजू बाकी नहीं है। आजकल की ये मुसीबत है, जायरी ने हरम से कोई पूछे इकबाल, क्या हरम का तोहफा जमजम के सिवा कुछ भी नहीं है जी। हरम पे जाते हैं लोग, जमजम का तोहफा लाते हैं, अल्लाह का घर देख के आते हैं, क्या तुम वहां जाकर अपना दिल तब्दील करके नहीं ला सकते तोहफे में, कि अपने अजीज रिश्तेदारों को ऐसा दिल पेश करो कि मैं अल्लाह का घर देख के आया हूँ और अब मेरा दिल अल्लाह की याद में धड़कता है, ऐसा भी तो हो सकता है। जायरीन हरम से कोई पूछे इकबाल, क्या हरम का तोहफा जमजम के सिवा कुछ भी नहीं, और भी तो चीजें थी जो ला सकते थे है जी, वो याद इलाही का तोहफा तुम ले आते तो कितनी अच्छी बात थी। कितनी तस्कीन से है वाबस्ता तेरे नाम के साथ, कितनी तस्कीन है वाबस्ता तेरे नाम के साथ, नींद कांटों पे भी आ जाती है आराम के साथ। सुभान अल्लाह, अल्लाह का नाम इतना प्यारा है जी। अल्लाह 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 अल्लाह, कितना प्यारा नाम। نام ہے اللہ 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 کتنا پیارا نام ہے عاشقوں کا مینا و جام ہے. بس جی چاہتا ہے میں تو اللہ کے نام لیتا رہوں. میرے بھائیو وقت ختم ہو گیا, ایک دم بھی محبت چھپ نہ سکی جب تیرا کسی نے نام لیا. اللہ کا اتنا پیارا نام ہے, بس اللہ کا نام آتا ہے میرے بھائیو یہ محبت جو ہے بس پھر اپنا کام دکھا دیتی ہے. ساری دنیا کی نگاہوں سے گرا ہے مجذوب, تب کہیں جا کے تیرے دل میں جگہ پائی ہے. جی اس کے لیے محنت کرنی پڑتی ہے. جی اللہ تعالی ہم سب کے حال پر رحم کرے. میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی, میں اسی لیے مسلمان, میں اسی لیے نمازی. جی یہ اللہ تعالی کا انعام ہے, اللہ ہمیں ایسا بنا دے. اللہ کرے دل اگر اس خاک میں زندہ ہو بیدار ہو, تیری نگاہ توڑ دے آئینہ محرما. سبحان اللہ کیا کیا پیارے پیارے بات ہے. جی دن وہی دن ہے, شب وہی شب ہے, کہ تیری یاد میں گزر جائے. جی وہی دن ہے وہی رات ہے جو تیری یاد میں گزر جائے. اگر وہ نہیں تیری یاد تو پھر وہ دن کیا وہ رات کیا. شوق میری لے میں ہے, شوق میری نے میں ہے, نغمہ اللہ ہو میرے رگو پہ میں ہے. جی یہ ایسی کیفیت آج پتہ نہیں کہاں چلے گئے وہ لوگ جو اللہ اللہ کیا کرتے تھے. اللہ اللہ کر دی رہے خالی بھانڈا بھر دی رہے, جے تو کھیڈے عشق دی بازی جوے بازاں وانگوں کھیڈ, ہارتے پئی ہاوے ہر دی رہے ویلی نہ بے. سبحان اللہ پنجابی کے اشعار ہیں, آپ لوگوں کو پتہ نہیں سمجھ آ رہے ہوں گے کہ نہیں آ رہے ہوں گے. سبحان اللہ سبحان اللہ. ہر جگہ یاد یار میں رہنا, چند جھونکے خزاں کے بس سہلو, پھر ہمیشہ بہار میں رہنا, نور میں ہو یا نار میں رہنا. میرے بھائیو یہ زندگی کے چند دن ہیں, اس میں یاد الہی کر لو. ہے جی اس یاد الہی کی وجہ سے کچھ تکلیفیں بھی آئیں گی, کچھ پریشانیاں بھی ہوں گی, کوئی بات نہیں. اس دنیا میں آئے ہو, اگر تھوڑی سی تکلیف میں بھی زندگی گزر جائے گی, فکر نہ کرو اس بات کی. ہے جی انشاءاللہ بہت جلد اللہ تعالیٰ اس کے مزے چکھائیں گے, اللہ سے ملاقات ہوگی, اللہ تعالیٰ ہم سے سب سے راضی ہو جائے, اللہ قبول مقبول فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.